खुदावंद जो कहर करने में धीमा और शफ़त में गनी है, उसके पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से फिर अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे। जैसे कल हमने ईमानदारों के लिए वो पांच ताज, जो कोई गालब आएगा, जो कोई वफादारी से खिदमत करेगा, जो कोई वफादारी से गवाही देगा, जो कोई वफादारी से खुदावंद में कायम रहेगा, जो कोई दुखों की बर्दाश्त करेगा, किसी को ना मुरझाने वाला सेहरा, किसी को खुशी शादमानी का ताज, किसी को जलाल का सेहरा, किसी को रासबाजी का सेहरा, किसी को जिंदगी का सेहरा, और किसी को वो ना मुरझाने वाला जलाली सेहरा जो खुदावन की तरफ से मिलेगा। तो मेरे साथ निकाले जो बहन भाई कलाम खुदा पढ़ सकते हैं। आज हम फिर पांचवा बाप इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पांच बाप उसकी छठी आयत को पढ़ेंगे और इसमें से चंद एक सच्चाइयां सीखेंगे। हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। पांच बाप उसकी छठी आयत, और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की रहनुमाई हो, आमीन। आए चंद लम्हों के लिए खुदा के जोर झुक जाएं। खुदावंद, आज का कलाम हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो। हमारी तारीकी की उन राहों में खुदा खुदा जो इस दुनिया में रहते हुए हमें सामना है, अबलीस उसके फरेब उसके झूठों में खुदाओं खुदा हम हिस्सेदार नहीं बल्कि खुदावंद उसे ना करने वाले बने। सारा जलाल यीशु के नाम को मिले, उसी के पाक और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। यहां पर जब इस मुहावरे को पढ़ते हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, दूसरे लफ्जों में किसी को भी धोखा आपको देने की इजाजत ना दे। ये बड़ा सादा सा सच है कि जब तक हम अपने घर में इजाजत किसी को नहीं देते, कुंडी खड़काता रहे, वो अंदर नहीं आ सकता। ऐसा ही है जी। वैसे ही खुदा का बंदा पालूस रसूल बनीनु इंसान को इस भेद के बारे में बताता है कि तुम्हें खुदा की तरफ से ये कुव्वत, ये मर्जी, ये इख्तियार दिया गया है कि तुम ये फैसला करो कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। आपको यीशु मसीह की जिंदगी का वो वाकया याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को रूह जंगल यानी कि बियाबान में ले गया ताकि वहां पर अबलीस से आजमाया जाए। जब अबलीस से आजमाया जाए तो खुदावन ने क्या किया? अबलीस को मौका नहीं दिया कि यीशु को धोखा दे। वो आजमाया गया, लेकिन उस आजमाइश पर क्या आया? गालब आया। इस भेद को हमें जानने की जरूरत था। बाइबल मुकद्दस में जब कहा गया है अबलीस को मौका ना दो, तो उसका मतलब यह है कि हम खुद ही उसे मौका देंगे तो वो काम करेगा। इसी बाब के, इसी किताब के जब हम खत को देखते हैं, चौथे बाब की 27वीं आयत में, वहां पर क्या लिखा है? और अबलीस को मौका ना दो। ये पालूस की तरफ से हुक्म है, यहां भी पालूस की तरफ से हुक्म है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। कोई कोई का लफ्ज यहां पर गिराए हुए फरिश्ते हो सकते हैं, इंसान हो सकता है, कोई तालीम हो सकती है, कोई सोच हो सकता है, सोच सकती है, कोई ख्याल हो सकता है। सो किसी भी गलत सोच गुमराही को मौका ना दें कि वो आपको गुमराह करे। ये हमारे अपने इख्तियार में है। रोटी हम खुद खाते हैं, क्या कोई रोटी हमारे मुंह में डाल के जबरदस्ती हमको खिला सकता है? नहीं, जब तक हम इजाजत नहीं देंगे कोई रोटी हमें खिला नहीं सकता। सो बाइबल मुकद्दस में इस भेद को जाने। बहुत दफा कहते हैं कि जी अबलीस ने मुझसे ये काम करवाया, शैतान ने मुझे ये कहा, शैतान ने मुझे ये कहा और उसने मुझसे करवाया। ये बिल्कुल झूठ बयान है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अबलीस ने कहा और हमने उसे इजाजत दी या दावत दी उस काम को करने के लिए। पंजाबी की ये ता बहुत ही प्यारी कहावत है कि ताली दो हाथों से बाजती है, ऐसे ही ना जी, बजती है ना दो हाथों से। इस हाथ को जब तक इस हाथ से नहीं मिलाया जाएगा आवाज पैदा नहीं होगी। तो खुदावंद यसु मसीह की जिंदगी के वाकया में जब यसु मसीह यहां पर कहता है कि अबलीस को मौका ना दो, यहां पर जब पालूस रसूल के वसीला से पालूस रसूल रूह की रहनुमाई में लिखता है कोई तुमको धोखा ना दे, तो इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अगर हम नेकी का इरादा करें तो कोई हमसे बदी करवा नहीं सकता। अगर हम करेंगे तो फिर ये नहीं करेंगे कि अबलीस ने हमसे करवाया। हम ये कह सकते हैं कि अबलीस ने हमें आजमाया और हमने उस आजमाइश का क्या किया, सामना ना किया बल्कि कहा कि हाँ आओ मिलकर इस बात को करें। इसलिए इस बात इस सच को जानने की जरूरत है। बहुत दफा अबलीस जिस तरह यसु मसीह को बहकाता है, आपको याद है यसु मसीह की आजमाइश मत्ती 4 बाब पढ़ना चाहते हैं, जरा निकाले मेरे साथ। वहां पर खुदावंद यसु मसीह आजमाए गए लेकिन खुदावंद यसु मसीह ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। हाँ जी, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब पहली आयत में यूं लिखा है, उस वक्त रूह यसु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से अजमाया जाए। रूल कुदस ने उसकी रहनुमाई की कि जंगल में जाए क्योंकि वहां पर यसु मसीह की आजमाइश होगी और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तीसरी आयत, और अजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। बहुत दफा हमें तैश दिलाने के लिए इबलीस कहता है तुम मर्द हो इसलिए ये काम कर दो, किसी से झगड़ा कर लो, उसने तेरी बेइज्जती की है, उसने तुझे बड़ा बुरा भला कहा है। और हम तैश में आकर बहुत दफा मसीही ईमानदार क्या करते हैं, कोई तुमको बेवायदा बातों से धोखा ना दे, उस धोखे में आकर क्या करते हैं, गुनाह का चुनाव करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को तैश दिलाई गई कि अगर तू खुदा का बेटा है। इबलीस जानता था कि वो खुदा का बेटा है, उसने अपनी सारी पैदाइश के दिन से लेकर इस दिन के बाद पहले तक और आज तक उसे जाना है कि वही यसु मसीह है जो तख्त पर खुदा का बर्रा बैठा हुआ है। इबलीस जानता था यसु मसीह को। दूसरी आजमाइश में भी फिर यही बात कही कि तू अपनी बाबत इस किंगरे से अपने आप को नीचे गिरा दे तो मेरे तेरे खुदा के फरिश्ते तेरे फरिश्ते तेरे कदमों को ठोस ठेस लगने नहीं देंगे। तो अबलीस अजमाइश करता है, अगर हम उस अजमाइश में पड़ते हैं तो हम खुद गुमराह होते हैं। अबलीस की अजमाइशें कुछ उस मछेरे की कुंडी की तरह है जिस पर गोया गडोया लगाया जाता है और पानी में गडोया हिलता रहता है और मछली देखती है। कुछ मछलियां जानती हैं, हो सकता है कि पहले 1, 2 या 3 बार वो उस कुंडी से निकली हों लेकिन फिर भी जब गडोया हिलता है तो मछली नहीं 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 और आखिर को वो जाती है। और जब जाती है जिस वक्त वो उस कुंडी पर अपना मुंह डालती है और वो फंस जाती है। अबलीस भी बहुत दफा हमको रुपए का, खूबसूरती का, झूठ का, लालच का, अपने फायदे का और बहुत सी बातों का क्या कहता है, कुंडी लगा के गडोया हलाता है। सो हमें इस सच को याद रखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश इबलीस की तरफ से है। जब हम आजमाए जाते हैं तो बहुत दफा हमारी अपनी ख्वाहिशें हमें फंसाती हैं। मेरे साथ एक हवाला देखें, यकूब उसका पहला बाब, यकूब उसका पहला बाब। कोई मुझको आपको धोखा ना दे, और दूसरे लफ्जों में हम किसी को मौका ना दें कि वो हमें धोखा दे। हाँ जी, यकूब पहला बाप। यूनानी जबान या इंग्लिश जबान में कहेंगे लेट नो वन डिसीव यू, यानी कि किसी को मौका ना दो कि वो तुम्हें धोखा दे। यकूब पहला बाप उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। सादा लफ्जों में पालूस रसूल यहां पर कहता है कि अगर तुम पर आजमाइश आई है, खुदा का बंदा यकूब कहता है, तो ये बात ना कहो कि खुदा मुझे आजमा रहा है। खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जांचता है। 14वीं आयत में लिखा है, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, जैसे मछली अपना एक वक्त का पेट भरने के लिए और एक नवाला खाने के लिए खींचकर फंसकर ललचाकर उस गुडोई को देख के कि हो मुंह में से पानी में मुंह में पानी आ गया कहने वाली बात है, तो मछली छिड़प्पा मारती है और फिर मछेरे के हाथ में आ जाती है। अबलीस जानता है कि वो हमें किस तरह गुमराह कर सकता है, और वो कब जानेगा, जब हम अपनी ख्वाहिशों का इजहार उसके सामने करेंगे। और जब हम फंस जाते हैं तो 15वीं आयत में लिखा है, फिर ख्वाहिश शामिला होकर गुनाह को जनती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जो गुनाह की जिंदगी मुसलसल शुरू होती है उससे बदनी मौत। बहुत दफा गुनाह में लोग जिंदगी गुजारते गुजारते मर जाते हैं। पुरानी बस्ती में बंदे ने शराब इतनी हद से ज्यादा पीनी शुरू कर दी कि बेहद पी और उसके अंदर का जो निजाम वो सारा खराब हो गया, और फिर भी वो नहीं रुका, तो उसकी ये नाफरमानी उसे कहां पर ले गई, मौत कब्र में। इस आयत को हम इस तरह कह सकते हैं, किसी को भी मौका ना दो कि वो तुमको धोखा दे। किसी भी चीज को, किसी भी फरेब को, अबलीस को, शैतान को, किसी झूठ को, किसी तालीम को, दुनिया की किसी भी ख्वाहिश को मौका आप देंगे, मौका मैं दूंगा, और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि अबलीस ने हमें आजमाया और अबलीस ने हमारा कान मरोड़ा कि आप चोरी करो, आप झूठ बोलो, आप नाफरमानी करो। झूठ भी हम खुद बोलेंगे, नाफरमानी भी हम खुद करेंगे, बेईमानी भी हम खुद करेंगे, नफरत भी हम खुद करेंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है, कोई तुमको फरेब ना दे, दूसरे लफ्जों में किसी को भी फरेब तुमको देने का मौका ना दो। अगर आप ईमानदार हैं और आपका माँ बाप मसीह से मोहब्बत नहीं करता तो माँ बाप का अदब करें, लेकिन अगर खुदा के कलाम के मुताबिक वो खुदा के खिलाफ हैं तो उनकी गुमराही में शामिल ना हो। जैसे बहुत दफा कह देते हैं कि मेरा बाप दादा ये काम करता है इसलिए मैं भी करूंगा क्योंकि उन्होंने किया है। माँ बाप के फरेब में ना आए। अगर शादीशुदा जिंदगी है उसमें भी अगर को मसला है तो खुदा की आवाज को सुने, ना के दुनिया की। मेरे साथ एक हवाला देखें, पतरस, पत्रस का पहला बाप। पत्रस का पहला आम खत, आए देखे तीसरा बाप उसकी 13वीं आयत। पहला पत्रस 3 बाप आए उसकी 8वीं आयत से पढ़ें, ये सारे हुक्म हैं। गर्ज सब के साथ यक दिल और हमदर्द हो, ये हुक्म है। ब्रादराना मोहब्बत रखो, ये हुक्म है। नरम दिल और फरोतन हो, ये हुक्म है। बदी के इर्ज बदी ना करो और गालियों के बदले गालियां ना दो, ये हुक्म है। बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, ये हुक्म है। चिनाचे जो जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से बाज रखे, ये हुक्म है। अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हमें जुबान को बदी से बाज रखना होगा, और हम बाज रख सकते हैं। हम इसी जुबान से लानत, इसी जुबान से गालियां, इसी जुबान से बददुआ, इसी जुबान से सच्ची गवाही, हौसला अफजाई, बरकत, दुआ और रहनुमाई कर सकते हैं। और होंठों को मुकर की बात कहने से बाज रखें, ये हुक्म है। बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला, ये हुक्म है। सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रह, ये हुक्म है। क्योंकि खुदावंद की नजर रासबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। 13वीं आयत पर गौर करें। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो, अगर हम नेकी करने में सरगर्म हैं, तो तुमसे बदी करवाने वाला कौन है? अगर हम अच्छाई करना चाहते हैं तो कोई हमसे बुराई करवा नहीं सकता। अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं तो कोई आपसे सच बुलवा नहीं सकता। अगर आप सच बोलना चाहते हैं तो कोई भी आपसे झूठ बुलवा नहीं सकता। हम किसी को मौका ना दें कि वो हमें गुमराह करे। आए हम खुदा के सुर झुकें।